नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। रिजर्व बैंक को चालू वित्त वर्ष में मुद्रा स्फीति 4.5% रहने की उम्मीद। वित्त मंत्री कल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट यूजी पेपर लीक मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। और महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका का मलेशिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 24-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24-25 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों में आर्थिक विकास में मदद हुई है। एक रिपोर्ट।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु और सेवा कर, जीएसटी और ऋण शोधन और दिवाला कानून आईबीसी जैसे ढांचागत सुधार भी परिपक्व हो गए हैं और उनके वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 2024 में मुद्रास्फीति 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर वर्ष 2020 की तुलना में 20% अधिक रही है। इस वर्ष भी वृद्धि दर सुदृढ़ रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रमबल भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ विकास समावेशी रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की वास्तविक जीडीपी दर में वित्त वर्ष 2024 में 8.2% वृद्धि हुई है और लगातार तीसरे वर्ष ये 7% से अधिक दर्ज हुई है। सर्वेक्षण में 2024 के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य सकारात्मक बताया गया है, जिसमें वस्तु व्यापार बढ़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। संसद के बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए।
मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे।
श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया।
मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए।
पिछले सत्र में संसद सत्र को बाधित करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया।
केंद्रीय बजट 2024-25
आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक कल सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा।
ओडिशा में 17वीं विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल रघुबर दास के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उड़िया गौरव के मुद्दे पर विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की, जिसने कथित रूप से राज्य सरकार के एक कर्मचारी पर हमला किया था। भाजपा सरकार इस महीने की 25 तारीख को 2024-25 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश करेगी। नई सरकार का यह पहला बजट होगा जिसे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पेश करेंगे, जिनके पास वित्त विभाग भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान, शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर या फिर नकली पुलिस, CBI, कस्टम अधिकारी बनकर सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें, शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में देश में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है और वो नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी स्थापना के बाद से 244 परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनमें 4.5 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। श्री प्रधान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान को निंदनीय बताया जिसमें उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की आलोचना की थी। देश में पेपर लीक की घटनाएं आम होने के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि CBI मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी।
श्री प्रधान ने सदन को बताया कि नीट यूजी परीक्षा में केवल एक स्थान पर विसंगतियां और भ्रष्टाचार के मामले का पता चला है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली ने बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर श्री प्रधान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
There is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. The issue is, there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. As this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level?
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के पहले दिन सदस्यों से अपील की कि वे विचार विमर्श और बहस के सिद्धांतों का पालन करें और सुदृढ़ संसदीय विमर्श के लिए सुचारू वातावरण बनाएं। बाद में उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों, टीएमसी और अन्य दलों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज कर दिए। सरकार ने कहा है कि कंपनी कानून के तहत 63 प्रमुख अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से बाजार को बढ़ावा मिला है, लंबित मामलों में कमी आई है और देश में कारोबार करने में आसानी हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए कॉरपोरेट कानून मंत्रालय द्वारा 2 विशेष अभियान शुरू किए गए थे। उन्होंने सदन को बताया कि इस साल जुलाई तक विभिन्न अदालतों में 6294 मामलों का निपटान किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को कई मायनों में बढ़ावा मिला है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 47,512 करोड़ रुपए से अधिक की प्रथम अनुपूरक बजट मांग राज्य विधानसभा में रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा की आवाजाही को सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक ही सीमित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और इसका समय भी निर्धारित करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। एक रिपोर्ट।
पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। ये पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे, जिनकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। यह पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट और असाधारण कार्य के लिए दिए जाते हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्रीलंका में एशिया कप 2020 महिला क्रिकेट में आज ग्रुप बी में मलेशिया के साथ मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। ग्रुप बी में ही आज शाम 7 बजे बांग्लादेश का मुकाबला थाईलैंड से होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 5 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयकर आयुक्त सौम्य आचार और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर इस विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5-7% के बीच रहने का अनुमान। रिजर्व बैंक को चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.5% रहने की उम्मीद। वित्त मंत्री कल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट यूजी पेपर लीक मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।